रासलीला में भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। श्री सुकुवाच इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधाम रुदतु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियाँ विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सकी, करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। तासा माविर्भुच्छैरिहि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्भिः साक्षान् मन्मथ मन्मथ। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था, गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था, सबके मन को मथ डालने वाले, कामदेव के मन को भी मथने वाले था। तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रत्युत्फुल्ल दृशो बला उत्तस्थुर युगपत सर्वा तन्व प्राणमिवागतम। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर परम मनोहर प्राणवल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना नूतन स्फूर्ति आ गई हो। काचित् कराम्बुजं सौरे जगृहेऽञ्जलिनाम्बुधा काचित् दधार तद्बाहुं अंसे चंदन रूषितम्। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंडों को अपने कंधे पर रख लिया। काचिदंजलिना गृहणा तन्वे ताम्बूल चर्चितम् एकातदंघ्र कमलम् संतप्ता स्तनयोरधात। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रख लिया। एका भृगुटिमा बद्ध प्रेम संरब्ध विह्वला व्रति वह चटकटाक्षेपी संदष्ट दशनक्षरा। पांचवी गोपी प्रणय कोप से विह्वल होकर भौहें चढ़ाकर दांतों से होठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बींधती हुई उनकी ओर ताकने लगी। अपराणमिषदृग्भ्याम जुषाणा तन्मुखाम्बुजम् आपीतम् अपि नातृप्यत संतस्तस्चरणम् यथा। छठी गोपी अपने निर्मय नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रसपान करने लगी, परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। तम काचिन् नेत्ररन्ध्रेण हृदिकृत्य निमिल्य च पुलकाङ्घ्योपगूयास्ते योगी वानन्द संप्लुता। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उनके आँख बंद कर और उसने अपनी आँखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। सर्वास्ता केशवालोक परमोत्सवनिवृता जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जना। परीक्षित, जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गई और शांत के समुद्र में डूबने उतराने लगी। ताभिर्विधूत शोकाभिर्भगवान अच्युतो वृतः व्यचरोताधिकं तात पुरुष शक्तिभिर्यथा। परिचित, यो तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस है, उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है, फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर और भी शोभायमान होता है। ता समादाय कालिंद्या निर्विश्य पुलिनम विभु विकसत कुंद मंदार सुरभ्य नीलसत पदम। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलीन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से नतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरत चंद्रांश संदोह ध्वस्त दोषातम शिवम कृष्णाया हस्त तरला चितको मलवालुकम। शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली हो ही छटा दिखला रही थी, उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही न था, सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। वह पुरीन क्या था, यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालुका का रंग मंच बना रखा था। तद्दर्शनाह्लाद विधूत सुद्रुजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा यजुः स्वैरुत्तरीयै कुच कुंकुमांकितैः अच्चे कृपन्नासन पात्म बंधवे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आधी व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियाँ उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती है और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती है, कृतकृत्य हो जाती है, वैसे ही गोपियाँ भी पूर्ण काम हो गई। अब उन्होंने अपने वक्षस्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे सुहृद श्री कृष्ण के लिए विराजने के लिए बिछा दिया। तत्रोपविष्टो भगवान सहेश्वरो योगेश्वरान्तृहृदिकल्पिता सदः चकाश गोपी परिषद्गतोर्चित त्रैलोक्यलक्ष्मीकपदं वपुर्दधान। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है, वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। सभा जयित्वा दमनंग दीपनम सहासलीले क्षण विभ्रम ध्रुवा भुवा संस्पर्शनांग कृतांग्रिहस्तयो संस्तुत्यै सत्कुपिता बब्बासिरे। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षाओं और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान विलासपूर्ण चितवन और तिरछे भौहों से उनका सम्मान किया। उस किसी ने उनके चरण कमलों को अपने गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को। वे उनके संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थी, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुँह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगी। गोप्यौचुहु भजत भजतो नु भजत्येक एक एतद्विपर्ययम् नो भयांश्च भजत्येक एतन्नो ब्रूहि साधुभो। गोपियों ने कहा, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? श्री भगवान वाच, मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थे कांतोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्म स्वार्थार्थं तद्धिनान्यता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है, न तो उनमें सौहार्द है और न तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। भजन्त भजतो ये वै करुणा पितरो यथा धर्मो निरपवादो त्रिसौहृदं च सुमध्यमा। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से हितैषियों से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। भजतो केचिद् भजन्त भजत कुतः आत्मा रामा शाप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रुह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों को का तो उनके सामने कोई प्रश्न नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। नाहम तु सख्यो भजतो पिजन्तुन् भजाम्यमेषा मनोवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तत्चिंतयान्यन्निभृतो नवेत। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्त वृत्ति और भी मुझमें लगे, निरंतर लगी रही ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप छिप जाता हूँ। एवं मदर्थोज्झित लोक वेद स्वानाम यो मय्यनुवृत्तये बलाः भया परोक्षं भजता तिरोहितम् मासूयितुम् मार्हत तत्प्रियं प्रिया। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसीलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो, तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। न पार्ये हम निर्वद्य संयुजाम स्वधाम ससाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवः या महाभजन दुर्जर्गेह श्रृंखला सम्रेश्च तद्व प्रतियातु साधुना।
मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे ऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ।
पूर्वार्धे रासक्रीड़ायां गोपी सांत्वनम्।